તારીખ 24/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 211 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 153
वचनामृत में आता है कि ज्ञानी को स्वभाव है यह काला नाग जैसा दिखता है, और दूसरी ओर ऐसा भी कहने में आता है कि ज्ञानी को शुभ स्वभाव के ज्ञाता है। तो ये दोनों में मेल किस प्रकार से है, क्या कहा कि शुभाशुभ भाव ज्ञानी को, अशुभ भाव को खैर छोड़ो, शुभ भाव भी काला नाग जैसा दिखता है। मैंने आत्मा के स्वभाव को घातक नाक क्या करता है, डसता है, काटता है, आदमी मर जाता है, वैसे शुभ भाव भी स्वभाव का घातक है, ऐसा दिखता है, दिखता है मैंने ऐसा लगता है उनको। एक और दूसरी ओर कि ज्ञानी तो ज्ञाता दृष्टा है, शुभ शुभ भाव कोई भी हो, ज्ञान से जितना भी अन्य द्रव्य भाव है, अन्य द्रव्य हो, अन्य भाव हो, सब ज्ञान का नहीं है। तो ज्ञानी को दो प्रकार के परिणाम मेल वाले नहीं है, ये दो प्रकार के परिणाम में मेल नहीं है। फिर वो कैसे एक साथ होते हैं, जब मेल नहीं है तो कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न उठाया। समाधान देते हैं, ज्ञानी को भेद ज्ञान की दशा है, क्या है, भेद ज्ञान वर्तता है निरंतर। कोई भी उदय हो, कोई भी प्रसंग हो, वेद ज्ञान धारावाही रूप से सतत वर्तता है। यह स्वभाव है और यह विभाव है, ऐसा उसे सहज जानने में आता है। अपना ज्ञान स्वभाव भी प्रत्यक्ष है, और जो भी विभाव परिणाम है उसका विभाव रूप है, चाहे शुभ हो शुभ हो, किसी भी प्रकार का हो। ज्ञान से, ज्ञान के अलावा जितने भी हैं ये सब विभाव है। चारित्र गुण के विकृत परिणाम जितने भी हैं, वितरागता को छोड़ करके, आंशिक वितरागता है ज्ञानी को, आंशिक जो वितरागता नहीं है उसमें जो भी भाव है वो विभाव भाव है। उतना ही नहीं, ज्ञान पर पदार्थ के प्रति जाता है, पर सम्मुख होता है, वो भी ज्ञान का विभाव है, और ज्ञान चंचल होकर के अन्य अन्य पदार्थ में चंचलता को धारण करते हैं गति करके, वो भी ज्ञान का विभाव है। जो स्वभाव नहीं है वो सब विभाव है, दोनों को ज्ञानी जानता है। नायक मैंने अपना आत्मा, नायक रूप से अपनी परिणति में खड़ा है। आत्मा कहाँ है? अपने ज्ञान परिणति में है। अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान परिणति में मौजूद है, खड़ा है। अल्प अस्थिरता है। चौथे गुणस्था ने भी ज्यादा अस्थिरता नहीं लिया, अल्प अस्थिरता है। अल्प क्यों लिया? कि वो अस्थिरता टिकने वाली नहीं है, अस्थिरता मिट जाएगी। ज्ञानी स्वरूप में स्थिर रहने के लिए उद्यमवंत है, उसका उद्यम उसका पुरुषार्थ चल रहा है स्वरूप में स्थिर रहने के लिए, इसलिए अस्थिरता है वो मिट जाएगी। पुरुषार्थ विफल होगा तो वो बात नहीं है, पुरुषार्थ सफल होने वाला है ही, तो उनको प्रतीति है, खात्री है, विश्वास है, इसलिए वो अस्थिरता होने के बावजूद भी अल्प है। ऐसे काल के हिसाब से तो ज्यादा है, क्योंकि स्थिरता का काल बहुत अल्प है, एक सेकंड से भी कम भाग में है, और बाकी सब अस्थिरता का समय चलता है, फिर भी उसको अल्प बताया है, ज्यादा नहीं बताया है। क्या क्या अल्प अस्थिरता है? क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है, और स्थिरता की ताकत बहुत है। जो भी स्थिरता होती है उसमें ताकत बहुत है, तो अल्प अस्थिरता है उनको भी वो जानते हैं, विभाव को भी जानते हैं, और अल्प अस्थिरता है वो भी विभाव है, वो भी चारित्र गुण का विभाव है, ज्ञान का उपयोग का विभाव है। फिर भी उसकी भावना, ज्ञानी की भावना ऐसी है कि मैं स्वरूप में परिपूर्ण लीन कैसे हो जाऊं, मेरे को तो, मुझे तो स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए जम जाना है, ऐसी भावना है, बाहर निकलना ही नहीं है, तो वचना मृत में आता है। ऐसी धन्यपल, ज्ञानी की कैसी भावना होती है कि ऐसी धन्यपल कब आए कि जिससे स्वरूप से बाहर निकलने का फिर अवसर ही नहीं हो। जिस पल में स्वरूप में लग गया, जम गया, शादी अनंत काल निकले ही नहीं बाहर, क्षपक श्रेणी लगती है, जब से निराज को क्षपक श्रेणी लगती है तब। बाहर में कभी आने का उनको, अनंत काल में भविष्य में कभी भी वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसी धन्यपल हमको कब आएगी, ऐसा ज्ञानी भावना को भाते हैं, भावना में ऐसी स्थिरता को भाते हैं। ऐसी भावना को लेकर के वो भावना वसात ज्ञानी को स्वभाव काला नाग जैसा लगता है, उस अपेक्षा से वहां बात है। बाकी उनको द्वेष बुद्धि नहीं है, विभाव के प्रति या किसी द्रव्य भाव के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं है। बहुत पढ़ते हैं इसके तो, और भी तो विषांतर हो जाएगा, इसको नहीं लेते, परंतु ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा के पुरुषार्थ में लगे हैं, वितराग भाव में आए हैं और वितराग भाव की वृद्धि करने में लग रहे हैं, इसकी प्रधानता है, इसकी मुख्यता है। तो उस मुख्यता के कारण से जितने भी अन्य द्रव्य भाव है वो उसके ज्ञेय मात्र है, उनका परिणमन के एक अंश में, मुख्य अंश में ऐसा परिणमन है। मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ, ज्ञान मात्र ज्ञाता हूँ, मेरे से अतिरिक्त भिन्न जो भी द्रव्य भाव है मेरे ज्ञेय है, इसके प्रति मेरा साम्य भाव है। सबको एक ही वर्ग में डालते हैं क्या? मैं ज्ञाता और बाकी सब मेरे ज्ञेय, मैं ज्ञान मात्र बाकी सब ज्ञेय मात्र, मात्र ज्ञेय। प्रधान रूप से ये चलता है। दूसरा कि जब वो आगे बढ़ते हैं उसमें जितने भी स्वभावादी आते हैं उनको रोकते हैं, अनंत शांति प्रकट नहीं करने देते हैं, तो उनको दुश्मन जैसा लगता है। कैसा है? काला नाग स्वभाव के घातक, और स्वभाव का घात करने का उसका स्वभाव भी है। सुभा शुभ भाव का स्वभाव कैसा है कि आत्म स्वभाव का घात करना, तो वो भी एक परिणाम के एक अंश में वो भी बात है। ज्ञानी के परिणाम में दो अंश हो गए हैं, दो भाग हो गए हैं परिणमन में। एक स्वभाव बाजू का, स्वभाव सदृश, स्वभाव रूप, स्वभाव मय। दूसरा विभाव अंश है साधक ऐसी, जो अंश में विभाव है उसमें शुभाशुभ भाव भी है और शुभाशुभ भाव के प्रति का द्वेष भाव भी है। द्वेष बुद्धि नहीं है, हेय पड़ा कहो या द्वेष कहो, लेकिन है तो सही। राग और द्वेष मुख्य दो है, ताकि सब इनके ही संतान है। या तो राग होएगा या तो द्वेष होएगा। ज्ञानी को द्वेष नहीं आता है सो बात तो नहीं है। प्रशस्त राग है, प्रशस्त द्वेष है, और प्रशस्त राग है और प्रशस्त द्वेष भी है। चारों प्रकार एक अंश में, विभाव अंश में चलता है, चारों में से कुछ न कुछ चलता है। तो ये जो अपना शुभ भाव के प्रति यही पना है, द्वेष है, ये प्रशस्त द्वेष है। वो कभी कभी अपनी निंदा कर लेते हैं, प्रशस्त द्वेष के वशात क्या करते हैं कि अपनी निंदा करते हैं। मुनिराज है तो भी करते हैं कि मैं तो पामर हूं, मैं कितना पामर हूं, अब भी मुझे क्यों ये शुभ भाव होता है। मुनि को अशुभ तो होता ही नहीं, मुनिराज को अशुभ होता ही नहीं, जो शुभ आता है उसमें उसने अपनी पामरता गिनते हैं। हाँ, प्रशस्त द्वेष है। पर कभी किसी और के प्रति भी द्वेष आता है, वो अप्रशस्त द्वेष है। कभी किसी के प्रति क्रोध बुझाता है तो वो अप्रशस्त द्वेष है। ऐसे कभी किसी से लड़ाई होगी, अप्रशस्त द्वेष है। पर अपने भावों के प्रति का द्वेष है वो प्रशस्त द्वेष है। दोनों प्रकार के द्वेष संभवित है और हो सकता है, होता भी है। वो विभाव अंश का जो परिणमता है वो प्रशस्त अप्रशस्त मैंने एक ठीक है एक ठीक नहीं है। जो प्रशस्त द्वेष है वो ठीक है, होना चाहिए। क्या उसका ही पना, उसका निषेध होना चाहिए, वरना अनुमोदन हो जाएगा। अगर वो प्रशस्त द्वेष नहीं होगा तो उस राग का राग हो जाएगा, तो ज्ञान दिशा छूट जाएगी। यानी को राग का राग नहीं होता, राग का द्वेष होता है, राग का राग नहीं होता है। तो जितना भी विभाव अंश है वो विभाव अंश मर्यादित है, इसलिए अपेक्षा से बात की है। क्या क्या कि वहां अपेक्षा से बात है, बाकी द्वेष बुद्धि नहीं है। अपेक्षा में मर्यादित बात है। स्वभाव परिणति अमर्यादित है, स्वभाव अंश जो प्रकट हुआ है वो अमर्यादित है, और जितना भी विभाव अंश है वो मर्यादित है। क्यों मर्यादित है? कि ये स्वभाव अंश को मारता नहीं है उस वक्त, मतलब स्वभाव अंश को कम नहीं कर, कम नहीं हो जाता उसके कारण से। उसके कारण से वृद्धि होने में थोड़ी तकलीफ है, स्वभाव अंश बढ़ने में थोड़ी रुकावट आती है, लेकिन जो उपलब्ध है प्राप्त है उसको वो मार नहीं सकता, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। बल्कि वो स्वभाव अंश से विभाव अंश की हानि होती रहती है, और ये हानि होते होते विभाव अंश बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पूर्ण वितराग दशा और केवल ज्ञान दशा हो जाएगी। इसलिए वो मर्यादित है, क्योंकि इसकी ताकत टूट गई है। मर्यादित है मतलब इसकी ताकत टूट गई है। और जो स्वभाव अंश है वो बलवान है, तो अपना बल बढ़ाता जा बढ़ाता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। विभाव अंश है उसकी हानि होती रहती है, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म, सर्वनाश उसका हो जाएगा। लेकिन है दोनों, दोनों है इसलिए दो प्रकार है, और ये दोनों एक समय में हो सकते है, इसलिए ज्ञान दशा नहीं है ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी को रागांश भी है और वितरागांश भी है, अपने परिणम में दो भाग हो गए हैं, दो भाव हो गए हैं, दो प्रकार के भाव हो गए हैं। उसमें वितरागांश भी है और रागांश भी है। रागांश कमजोर है, वितरागांश वितरागांश बलवान है। रागांश गौण है, वितरागांश मुख्य है, ये बात है। इसलिए वो काला नाग जैसा लगता है वो मर्यादित बात है, क्योंकि वो विभाव अंश में जाता है, ताकि उसको द्वेष बुद्धि तो होती होती नहीं। राग बुद्धि और द्वेष बुद्धि दोनों बुद्धि नहीं होती,
नहीं है।
नहीं, जैसे कि भगवान साक्षात विराजमान हो संगो शरण हो, उसकी भक्ति करता हो, ज्ञान नृत्य करे, कितनी भक्ति करे के नृत्य करे, उसकी वितरागता को देख करके थनगन 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 हो जाए, परिणाम थनगन हो तो शरीर भी उसका थनगन थनगन हो जाए, इतनी वितरागता के प्रति उसको बहुमान आ रहे, नृत्य करने लग जाए। इंद्र करते हैं, बहुत करते हैं, समोसा में बहुत ज्ञानी है, नृत्य नृत्य करते हैं भगवान को देख। राग बुद्धि नहीं, राग आता है अनुराग होता है वितराग के प्रति, राग बुद्धि नहीं होती। राग बुद्धि का मतलब क्या है? राग करने लायक है ऐसा अभिप्राय, ऐसी बुद्धि वो नहीं है। उसको भी उस वक्त हे जानता है, दुख रूप जानता है और काला नाग जानता है। सुभाव है ना, काला नाग जानता है। और द्वेष होता है, कभी किसी के प्रति द्वेष हुआ तो द्वेष बुद्धिपूर्वक द्वेष नहीं होता है, हो गया तो हो गया, क्रोध का उदय आया, आंशिक जुड़ान हुआ, आंशिक भाव हो गया, हो गया सो हो गया, आगे पीछे लगाओ। द्वेष बुद्धि वाले को परिणति चलती है, राग बुद्धि वाले को परिणति चलती है। तो उसके अंदर में परिणति चालू रहती है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ऐसा। क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान है कि योग्यता समय समय की है, जब पलटते हैं ऐसा ही है, ये तो पर्याय का ध्रुवत्व हो गया, पर्याय का क्षणिकपणा का स्वीकार नहीं रहा और ध्रुव स्वरूप का अस्वीकार हो गया, ज्ञानी को ऐसा होता नहीं। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा तो है ही, एक और को प्रधान रूप से तो ज्ञाता दृष्टा तो है ही, फिर अल्प राग में अल्प द्वेष में कुछ हो जाता है तो हो जाता है, तो आगे पीछे लगाओ नहीं, क्योंकि ना राग बुद्धि है न द्वेष बुद्धि है। सुगानी जी ने लिखा है गुरु विष्णु प्रकाश में, 15 साल का संबंध आप कहते हो, क्या 15 साल का संबंध आप कहते हो, यार 12 वर्ष का संबंध उधारी ने बोलेला लाते हैं, आपने हमारे साथ का 15 साल का संबंध को काट दिया, छोड़ दिया, कि क्या न्याय संपन्न है, उचित है क्या? थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, तो सोगानी जी ने तब बोला कि 15 साल का संबंध, उसमें तो गिना भी नहीं, 15 साल का संबंध आप कहते हो, हमको तो क्षणी को उपयोग हुआ उतना ही संबंध है, चाहे जिस घर में माँ बाप से जन्म लिया हो और जितनी भी उम्र हुई हो, तो संबंध ज्ञानी गिनते हैं नहीं, कितना संबंध है तो उपयोग गया, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, उतना बस, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, क्योंकि वास्तव में ज्ञान के कुछ मेरे लगते नहीं है, मेरे कुछ नहीं लगते, ये तो एक संसार का ड्रामा है, नाटक है, उसमें ये व्यवहार करने की बात है, इसके साथ पिता का व्यवहार करना, इसके साथ माता का करना, इसके साथ पत्नी का करना, इसके साथ पुत्र का करना, पुत्र जैसा करना, पत्नी जैसा करना, माँ जैसा करना, लेकिन वो संसार के ड्रामा में जो प्लॉट आता है, जिस वक्त जो डायलॉग बोलने का आता है, बोल दिया, उसी वक्त भान है कि मेरा कुछ लेना देना इससे है ही नहीं, ये भी संसार के प्राणी है भटकते हुए, पर मैं भी संसार का अभी प्राणी हूँ, लेकिन वह भटकने वाला नहीं हूँ। बात कर रहा है, हाँ अच्छे कलाकार है, ज्ञानी पुरुष कलाकार है, अच्छे कलाकार है, ज्ञान कला जिसकेरे कट जागी, सो अंतर में है वही रागी, जिसके अंतर में ज्ञान कला है, तो कला है तो कलाकार है ही, कलाकार के पास तो कला होती है, ज्ञान को कला बोलते हैं, टेक्निक है, इसलिए हर उदय में हर प्रसंग में इसके भावों का संतुलन बना रहता है, चाहे कितनी भी लड़ाई करे, चाहे कितना भी भगवान के सामने राग से नृत्य करे, अपना संतुलन बना रहता है। स्वरूप में रहने का अवकाश रख करके बाहर आते हैं, पूरे पूरे बाहर आते ही चाहे सामने कुछ भी हो। तो क्षणिक संबंध है, तो वे ज्ञाता दृष्टा भाव उसी वक्त चालू है। ज्ञाता दृष्टापना चालू है एक अंश में, एक अंश में कुछ तनाव है, खिंचाव है, परिणाम लग जाते हैं। फिर भी उतना रस आता नहीं, भिन्नता का अनुभव होने से उतना रस आता नहीं। पड़ोसी का पक्ष करे, कभी थोड़ी लड़ाई भी करे, लेकिन जानता है कि मेरे को कुछ लेना देना नहीं, तो अपना पड़ोसी है इसलिए थोड़ा पक्ष कर लिया, बाकी हमको कोई लेना देना व्यक्तिगत रूप से है ही नहीं। इसलिए वहां द्वेष बुद्धि नहीं है। देखो यहाँ मुमुक्षु को थोड़ा विशेष विचार करना है कि हमको किस किस व्यक्ति से राग बुद्धि रहती है और किस किस व्यक्ति से द्वेष बुद्धि रहती है। कोई कंटिन्यू हमारा अभिप्राय तो नहीं रहा ना किसी व्यक्ति के प्रति। अगर होवे तो होगा, ज्ञान दशा इसलिए होगा, नहीं होगा तो ज्ञान दशा हो जाएगी। तो नहीं होना चाहिए तो कैसे नहीं हो उसकी सुविचारना और उसका प्रयोग दोनों उसको चलना चाहिए, तभी जाएगा, तभी ज्ञान दशा में आएगा। अगर उपेक्षा रख करके यूं का यूं चला जाएगा तो राग का शल्य और द्वेष का शल्य उनके पुरुषार्थ को उठना नहीं देगा, और वो पुरुषार्थ नहीं उठेगा तो स्वरूप का उपलब्धि, स्वरूप का अनुभव आगे जा करके होने वाला है ही नहीं, ऐसे ही समय निकल जाएगा। इसलिए ये पुरुषार्थ मुमुक्षु को करना है, खास करके अंदर में इसकी जांच करना है किसके प्रति मेरी राग बुद्धि है। पहले परिवार वाले को पकड़ना, किसको पकड़ना, सबसे पहले परिवार वाले को पकड़ना, कि पत्नी के प्रति है, पत्नी को पति के प्रति है, कोई लड़के के प्रति है, कोई पोता पोती के प्रति है, किधर है, पकड़ पकड़ के मारना अपने भाव को, क्या हटाना। हाँ, राग बुद्धि है मेरी, सतत चलता है, ये अच्छी है, ये लड़की अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा चलता है, फिर लेना मुमुक्षु में। क्योंकि उसके दो जगह सहवास समागम ज्यादा है, एक परिवार में समागम है, एक मुमुक्षुओं में समागम है, तो तीसरा जो है अपने समाज में समागम है, बाकी औरों से कोई लेना देना है नहीं, सारी दुनिया पड़ी है, अरबों लोग पड़े हैं, इससे हमारा कोई नाता कोई लेना देना है ही नहीं। घनिष्ठ संबंध है ये परिवार वालों से, तो सबसे ज्यादा इनके साथ रहना होता है 24 घंटों। बाकी प्रसंगिक मुमुक्षुओं के साथ रहना पसंद पड़ता है, और प्रसंग समाज लोग समाज वालों से भी प्रसंग पड़ता है, ये संधि है, और भी कोई सगे हैं, मित्र है, समाज है, नाती वाले हैं, जाति वाले हैं, उन लोगों से भी प्रसन्न पड़ता है। कभी किसी से राग बुद्धि हो जाती है, कभी किसी से द्वेष बुद्धि हो जाती है। वो एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है, विपरीत अभिप्राय का ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है। तो अपने को जो सुविचारना का विचार का ये तो विचार दशा ही है, उसमें समय यह लगाना है कि किसके किसके प्रति है, किसके किसके प्रति है। क्योंकि जिसके प्रति है इसका विकल्प आता है, जिसके प्रति राग है उसके प्रति राग का विकल्प आएगा, जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है उसका द्वेष का विकल्प आएगा, अनगमा का विकल्प आएगा, कहीं गमेगा कहीं नहीं गमेगा, विकल्प आएगा, बार बार आएगा, लंबाएगा या बार बार आएगा। तो ये सूचित करता है कि हमारी वहां बुद्धि पड़ी है, ये बुद्धि को हमें टालना चाहिए, उसका नुकसान देख करके और उसका प्रयोग करके हमको उसको टालना चाहिए। हो गया क्या है, ये शल्य है, और शल्य आत्मा को वो जैसा पैर में कांटा चुभता है, कांटा लग गया और निकालने में टूट गया, कुछ पैर में रह गया, अब चलेगा तो दबेगा, दबेगा तो इसकी जो पॉइंट है वो छुपेगी अंदर में, दर्द करेगा। ऐसा ये शल्य है कि आत्म शांति को चुभने वाला है, लेकिन भान नहीं है इसलिए पता नहीं चलता तो मुझे चुभता है कि नहीं चुभता है, भान नहीं है, पर उतना बारीक अवलोकन नहीं है, स्थूल अवलोकन है, स्थूल उपयोग है इसलिए पता नहीं चलता, जिन आत्म शांति को चुभने वाला है। शल्य है वो आत्मा को चुभता है अंदर, और पुरुषार्थ का रोधक है, पुरुषार्थ को स्वरूप सम्मुख होने में वो अवरोध करता है, आने नहीं देता सम्मुखता में। इसलिए ये एक काम खास करना है सभी मनुष्यों को, ये काम खास करना है। अब काम सौंप दिया, काम में लग जाओ, आपको काम सौंपा, काम में लग जाओ, पर काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो बताना फिर, क्योंकि कभी किसी को ऐसी आदत होती है काम बताया पर किया कि नहीं किया, बताई कि बताना अभी नहीं आता है कि हमने किया या नहीं किया, किया तो नहीं बताया, नहीं किया तो नहीं बताया, कैसे पता चले। हाँ होता है, बहुभाग ऐसा होता है कि काम तो बता दिया, कोई काम कर लेते हो लेकिन बताने की दरकार नहीं होती, नहीं बन किया तो बताने की दरकार नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हम तो इस तरह से काम लेते नहीं, काम इस तरह से लेते, काम बताते तो देखो आइए काम किया कि नहीं किया फिर बताना, बताना उतना ही नहीं, इतने टाइम में काम करके बताना है आपको। तभी आप कार्यक्षम है वो हम मानेंगे, वरना आपकी कार्य क्षमता नहीं है।
क्यों नहीं बताते
हैं?
क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? बताते क्यों नहीं बताते?
बस लापरवाही है क्या? बताना नहीं बताना वो दिमाग में नहीं रहता है, हमको काम बताया है, काम हमने किया कि नहीं किया हमको बता देना चाहिए, की दरकार तो होनी चाहिए ना, नहीं बताते तो पूछ लेना पड़ता है क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ तो बोलेगा तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर कैसे हो, उसकी चर्चा चलेगी। तो बताने वाले को तो नुकसान है ही नहीं, नहीं हुआ है तो कैसे होना चाहिए उसकी चर्चा चलेगी कि भाई ये प्रकार की दिक्कत है, उसमें अवरोध है, कई प्रकार की कठिनाइयां है, सब विचार करें और कुछ न कुछ रास्ता निकाले उसमें से। ठीक है, बताए नहीं तो इसी की चर्चा कैसे चलेगी, वो काम होगा कैसे, पर हो गया तो अच्छी बात है। ज्ञानी तो मात्र जानते हैं, ज्ञायक है, ज्ञाता है, तो वो प्रधान अंश देख करके, मुख्य अंश को देख करके ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा बोला जाता है। उसका जो गौण अंश है विभाव वाला, उनकी मुख्यता करके ज्ञानी रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मोही है, ऐसा बोला जाता नहीं है। चारित्रमो है लेकिन मोही है ऐसा बोला जाता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वही प्रधान अंश है, वही बलवान अंश है। इसलिए राग आता है उसका भी ज्ञाता दृष्टा है, राग का भी ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि वही प्रधानता है। तो ज्ञाता दृष्टापने में क्या होता है कि न उसको रखना है न उसको छोड़ना भी है, न ग्रहण करना है न त्याग करना है। और ज्ञाता दृष्टा रहने में तो मिट जाएगा तो एक और से उसका त्याग कर दिया या हो गया त्याग, ऐसा बोलने में आएगा। तो त्याग करने का प्रयोजन तो स्वयं सिद्ध हो जाएगा, फिर त्याग करूं त्याग करूं त्याग करूं ऐसा ऐसा विकल्प क्यों, इसकी मुख्यता क्यों? तो मुख्यता ज्ञाता दृष्टा बनेगी, राग का भी ज्ञाता दृष्टा है। परंतु उसे भावना तो ऐसी रहती है, उसको भावना तो ऐसी होती है कि ये अधूराश है, मेरी दशा है वो अधूरी है, मेरी दशा पूरी नहीं है। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी दशा अधूरी है, मेरा स्वरूप के आगे तो वो अनंत में भाग में है, जैसा मेरा पूर्ण स्वरूप है उसके आगे बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसा उनको लगता है। मुनि दशा में भी ऐसा लगता है, ओहो। फिर मुनि के साथ मुनि को देखते हैं तो मुनियों को तो क्षण ही प्रतिक्षण स्वरूप में वो जम जाते हैं, ऐसी मेरी दशा नहीं है, ऐसी दशा मुझे कब हो जाए कि मैं स्वरूप में लीन हो जाऊं, मुनि को देख करके उसकी भावना और बढ़ती है, मेरी ऐसी दशा कैसे हो जाए, क्योंकि उसको आगे बढ़ने में जो प्रयोजन भूत स्टेज आने वाला है वो मुनि दशा का है। जैसे सामान्य मुमुक्षु को प्रयोजन भूत स्टेज है वो उत्कृष्ट मुमुक्षुता का है, उत्कृष्ट मुमुक्षु को नेक्स्ट प्रयोजन भूत स्टेज है वो ज्ञान दशा का है, और ज्ञानी को मुनि दशा का है। ध्येय सबका एक पूर्ण दशा का है, लेकिन वर्तमान प्रयोजन एक स्टेज आगे आने का है, एक कदम आगे बढ़ने का है। तो उस स्टेज के लिए वो लालायत रहता है।
ध्येय
ध्येय तो एक वक्त बन गया तो बन गया, फिर ध्येय के पीछे दौड़ जो होती है वो मुनियों की ज्यादा होती है, इससे कम ज्ञानियों की है, इससे कम मुमुक्षुओं की है। ध्येय तो ध्येय सबका, ध्येय में तो ध्येय ही है,
सबका एक तरह का ही बन गया,
ध्येय हो गया वो ध्येय।
दिखावा किसका ज्यादा है?
लेकिन जिसकी उसके पीछे जो परिणाम की दौड़ है, वेग है, गति है, वो तो दशा के अनुसार है। मुमुक्षु से ज्ञानी को ज्यादा है, ज्ञानी से मुनि को ज्यादा है। ऐसी दशा मुझे कब हो जाए कि मैं स्वरूप में लीन हो जाऊं? इसलिए जो विभाव है वो आदरणीय नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, तो उसका अनादर होता है। विभाव आदरणीय नहीं है तो इसका अनादर होता है, स्वभाव आदरणीय है तो इसका आदर होता है, और साथ साथ ज्ञाता दृष्टा भी रहते हैं, दोनों बात चलती है। मुझे कभी वितराग दशा हो जाए, पूर्ण वितराग दशा, मुझे कब पूर्ण वितराग दशा हो जाए और मैं शाश्वत आत्मा में लीन रह जाओ, शाश्वत मैंने हमेश के लिए, अनंत काल, सादी अनंत, विभाव मुझे कुछ न कुछ भी नहीं हो, एक अंश भी अनंतमय भाग में भी विभाव को मैं रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो गंदगी है। थोड़ी गंदगी भले रहे, ऐसा कोई चाहेगा क्या है? पर वो भी जीभ पर, कहा जीभ पर कोई रखेगा? थोड़ी हो तो, कुछ कण हो तो, गंदे हाथ है साबुन से साफ कर ले, क्योंकि जीभ स्वाद लेने की चीज है, ऐसे ज्ञान है वो स्वाद देने की चीज है, वहां कोई भी विभाव होना नहीं चाहिए। जीव है आत्मा की, ज्ञान है वो आत्मा की जीव है। कि थोड़ा होता है सेप्टिक हो जाता है, आप क्या बोलते हैं? परु पास, हमारे पास परु बोलते हैं, पस पस हो जाता है ना, पस तो इंग्लिश शब्द है, पीप बोलते हैं। हाँ, तो उसकी सफाई कैसे करते हैं? खून निकले वहां तक, उसके कुछ कण रह जाएंगे तो डेवलप हो जाएगा, दूसरे खून को बिगाड़ेगा। थोड़ा भी उसका कण रह जाएगा थोड़े में, सफाई करने में तो दुखता है, साफ करने में तो कम साफ करे और थोड़ा रह जाए तो नए खून को बिगाड़ेगा वो, और बढ़ जाएगा वो, इसलिए उसको पूरा साफ करने का अभिप्राय रहता है। ऐसे ज्ञानी को एक कण भी विभाव नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। विभाव मुझे नहीं हो, मुझे पूर्ण स्वभाव हो, ऐसी भावना ज्ञानी को हमेशा हमेशा रहती है। ये भावना के अनुकूल, भावना के अनुसार उसका पुरुषार्थ भी चलता है। पुरुषार्थ बिना भावना होती ही नहीं, और भावना पुरुषार्थ के साथ ही होती है, दोनों अविनाभावी है, तब तो भावना कहने में आती है। अगर प्रयास के साथ नहीं हो भावना तो भावना नहीं है, खाली फालतू का विकल्प है, खाली विकल्प है, खाली पीली विकल्प से कोई काम होने वाला। ऐसे वो ज्ञान दिशा का विषय चला है 211 में। જ્ઞાન દશામાં સ્વભાવંશ અને વિભાવંશ બંનેનું પરિણમન, બંને અંશનું પરિણમન હોય છે. તથાપિ નાતા દ્રષ્ટાપણાની મુખ્યતા છે. વિભાવ ગૌણપણે હોય છે, એ પ્રકારથી એ નજરથી જ્ઞાનીને સમજવા યોગ્ય છે. વિભાવંશમાં રાગ દ્વેષ હોવા છતાં પણ રાગ દ્વેષની બુદ્ધિ નથી, તેનું તાત્પર્ય એ છે કે મુક્ષ જીવે પણ રાગ બુદ્ધિ અથવા દ્વેષ બુદ્ધિ એ રૂપ જે પૂર્વગ્રહ છે એનો અભાવ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું ઘટે છે.